वलकद अहलकना मा हौलकुम मिनल कुरा। अभी ये बात आ रही, आगे बात आ रही इसकी दूसरी मखलूक की। तो हमने हलाक किया, अब कुरैश मक्का को कहा जा रहा है कि हमने हलाक कर दिया जो तुम्हारे आसपास बस्तियां हैं ना, बहुत से यार ऐसी हलाक की। समूद को वो देखते थे, गुजरते थे ना, तो समूद के जब आप सरासरम भी तबूक की तरफ जा रहे थे तो हिजर की बस्ती से गुजरे थे समूद के, तो जब ऐसी बस्तियों के पास से गुजरे आप भी याद रखें जो ऐसे तबाह हुई पड़ी हैं और उनके खंडरात खड़े हुए हैं और कहीं पता नहीं किस हजारों साल पहले, तो क्या करना चाहिए, हमारा क्या रवैया होना चाहिए? आप सरासरम ने फरमाया यहाँ से जल्दी गुजर जाओ, यहाँ की कोई चीज़ भी इस्तेमाल ना करो, उनके पानी को भी इस्तेमाल नहीं करने दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोते हुए गुजरो, रोना ना है, रोने की सूरत ही बना लो, यानी फिर बड़े पिकनिक मनाने की जरूरत नहीं है आपको, वहाँ पे बड़े पिक्चर्स ले रहे हैं, बस हंसी खेल हो रहे हैं, देखो जी ये देखो वाह वंडर, ये देखो कैसा वंडर है, नहीं, रोने का मकाम है ये, रोने का मकाम है कि ये देखो ये हजारों साल पहले ये चीजें बनाने वाली कौमें कैसी ताकतवर और कैसी जबरदस्त होती थी, आज उनका हाल क्या है कि उनमें से कोई भी नहीं बाकी, उनकी नस्लों को भी खत्म कर दिया गया, कोई भी नहीं है, मिट गए वो ताकत, ये अपने आप को ताकत समझते थे ना, वो ताकत कितनी बड़ी है जो अल्लाह की ताकत है जिसे इनको मिटा के रख दिया। तो अल्लाह तेरे अजाबों से हम तेरी पनाह मांगते हैं, तेरी नाराजगी से तेरी पनाह में आते हैं। उनको देख के रोना चाहिए ना कि हंस रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, जाके वहां पे बैठ रहे हैं और बड़े बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। वो अल्लाह ताला ने कुरैश मक्का को फरमाया हमने हलाक कर दी जो तुम्हारे आसपास की बस्तियां हैं, तुम देखो तो सही, गौर करो। वो अब वो हिजर की बस्ती के पास से भी गुजरते थे समूद के पास से, इसी तरह वो जाते थे कौमे लूत की बस्ती का उनको पता था, कौमे सबा का उनको पता था, यमन की तरफ जाते थे, उस कैसे तबाहो बर्बाद हुई, तो कितनी बस्तियां बर्बाद कर दी अल्लाह ताला ने तुम्हारे आस पास ही। वसर्रफनल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन, और फेर के हम लाते हैं आयात ताकि वो लौट आए, वापिस पलट आओ अल्लाह की तरफ, इसलिए ये बताई जाती हैं बातें, ये पलट आओ, छोड़ दो वो रविश, छोड़ दो वो रास्ता जिस पे तुम चल रहे हो, अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ, ये इसलिए बताई जाती, ये हमें कहानियां सुनाने के लिए नहीं। जैसे हम बच्चों को कहानी सुना देते हैं कि चिड़िया एक कब्बे की कहानी, चलो जी ठीक है कहानी खत्म, तो हम भी तो कितनी दफा आद की कहानी सुन चुके, चलो जी कहानी खत्म हुई, इसलिए नहीं, लाल लहू भी अर्जुन शायद कि वो लौट आए, शायद इनको समझ आ जाए, शायद इनको पता चल जाए, शायद इनके दिल को कोई बात लग जाए, शायद कोई दिन तो हो इनको एहसास हो जाए कि नहीं पलटना है हमें, अल्लाहुम यरजिऊन, मजे के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं दी जा रही। एक तुम्हें याद हो जाए कितनी कौमें गुजरी थी, अच्छा जी अब मुझे क्विज होगा तो इसलिए मैं बता सकूं क्विज के अंदर, या कोई सवाल करेगा तो मुझे भी पता होना चाहिए ना कुरान के अंदर कौन कौन सी कौमों का कैसे जिक्र है, मैंने या तर्जुमा याद कर लूं या मैं इतने नंबर ले लूं, इसके लिए नहीं है ये किससे, इसलिए है कि इबरत पकड़ के वापिस पलट आओ, सिर्फ इबरत पकड़ के ही नहीं बैठ जाना, सबक लेके नहीं बैठ जाना, देखो एक कौम तबाह हुई, हाँ वाकई बड़ी कौमें तबाह हुई है, इस तरह के कमेंट्स करके नहीं बैठ जाओ, पलटो अल्लाह की तरफ, शायद वो पलट आए, शायद वो लौट आए, मेरा रब तू कितना करीम है, कुर्बान जाए कि वो रब कितना शफीक है, कितना मेहरबान है, कैसे कैसे समझाता है, हम पलट पलट के लड़ते हैं, फेर के लड़ते हैं, तरह तरह से समझाते हैं, कभी कौमों के ऊपर अजाब को बता के समझाया गया, कभी अजाब की बातें बता के समझाया गया, कभी जन्नत के किस्से बता के समझाया गया, कभी जहन्नुम की बातें बता के समझाया गया, कि कभी कयामत की हौलनाकी बता के समझाया गया, किसी पे तो पलट आओ, या कहीं पे भी नहीं पलटना, जिंदगी के किसी स्टेज में तो सोच लो कि बस है अब पलटने का वक्त है, मेरा रब मुझे किस किस तरह समझा रहा है, लेकिन क्या हो गया हमारे दिलों को, इतने सख्त हो गए कि इतनी बातें बताई जाती हैं असर फिर भी कुछ नहीं, इतने किस्से बताए जाते हैं, चलो किस्सों से ही समझ लो, ये तुम्हारे जैसे ही इंसान थे ना, उनके भी शबो रोज गुजरते थे, उनके भी बच्चे थे, उनके भी काम काज थे, उनके भी कारोबार थे, उनके भी तमद्दन था, उनका भी कल्चर था, वो भी बड़े प्राउड थे, उनके भी शादी ब्याह थे, उनके भी सारा कुछ इसी तरह थे जैसे तुम्हारे थे, फिर देखो चंद मिनट के अंदर कैसे मिट गए वो। किसी को उठा के ऊपर से पटखाया गया, आसमान से उठा के नीचे पटखाया गया, किसी को चीख का अजाब आ गया, किसी के ऊपर तूफान का अजाब आ गया, कोई गर्क हो गए पानी के अंदर। मैं फिर भी समझ नहीं आती, फिर के अल्लाह ताला लाता है। अकलमंद वो होता है जो दूसरे से सबक हासिल कर ले, इससे पहले कि वो खुद कोई दास्तान बन जाए, वो अकलमंद होता है। लेकिन देखो हम कैसे लोग हैं कि हम फिर भी नहीं समझते। फलाउला नसरहुमुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिया। अल्लाह ताला ने फिर एक सवाल पूछा है, सवाल पूछा है कि फिर क्यों नहीं मदद की उन हस्तियों ने जिनको इन्होंने अल्लाह के सिवा इलाह बनाया हुआ था तकर्रुब के लिए। तो ये नहीं कहते थे कि ये इलाह हैं, बल्कि इलाह इनको बनाया हुआ था कि ये अल्लाह के करीब हमें करते हैं, ये हमें अल्लाह के करीब करने वाली हस्तियां हैं, जैसे मुशरिकीन ने मक्का भी कहते थे। तो इनके शिर्क की बात की जा रही है कि देखो इन्होंने उन माबूदों को बताया हुआ था कि ये हमारी मदद करेंगे, आखरत में भी हमें अल्लाह के पास बचा लेंगे और दुनिया में भी हमें अल्लाह के तकर्रुब नसीब होगा इनके जरिए, हमारी इनके आगे इनकी अल्लाह के आगे, यही है ना बात। देखें वो ये नहीं कहते थे कि कायनात को इन्होंने पैदा किया है, जमीन आसमान को इन्होंने पैदा किया, वो ये कहते थे हमें अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन ये बस हस्तियां हमें अल्लाह के करीब करती हैं। तो फिर ये बताओ कि जब इनके ऊपर अजाब आ रहा था तो वो हस्तियों ने इनकी मदद क्यों नहीं की? आखरत में तो जाके क्या मदद करेंगी, यहीं पे उनको अजाब से बचा लेते, आखरत का अजाब तो बहुत बड़ा है। वो भी सोचते थे ना कि हम डायरेक्ट अल्लाह तक तो नहीं पहुंच सकते, ये हस्तियां ही हमें पहुंचाती, ये नहीं शिरक तो और क्या। उनके आगे झुकते थे, उनकी पूजा करते थे, ये खुश हो गए तो ये हमें अल्लाह के पास भी सुखरू करा देंगे, वहां पे भी हमारी, हमने इनके पीछे पीछे चल पड़ना है, बस इनका दामन पकड़ लेंगे, ये हमें पार करा देंगे वहां पे भी। तो फिर इनको क्यों नहीं उन्होंने बचाया उन हस्तियों ने? देखो कितना लॉजिकल सवाल है ना, कहाँ थी भी वो हस्तियां जिनके आगे ये झुकते थे, जिनके आगे ये दुआएं करते थे, जिनको इन्होंने सफारशी समझते थे, वो हस्तियां कह देती ना अल्लाह को, अल्लाह ताला इन्होंने तो हमें बड़ा पूजा है, अल्लाह इन्होंने हमें बड़ा खुश किया, तो इनको अजाब ना देना, वो कहती ना हस्तियां वो। अभी तुम कहते हो ना आखरत में हमारे लिए या हमारे लिए कुर्ब का जरिया, तो चलो वो तो एक ऐसी बात है जो बात अब आप कोई देख तो नहीं सकता उसको ना, लेकिन अजाब को रोक के दिखा देते, इनके ऊपर तो अजाब नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि ये इनकी पूजा करते थे जिन्होंने इनको बचाना है, जो अल्लाह के पास बड़े पहुंचे हुए थे, बल दल्लुआन हम, बल्कि खो गए उनसे, वदालिकुम इफ्कुहुम, और ये उनका झूठ था, वमा कानू यफ्तरून, और जो वो इफ्तरा करते थे, जो वो घड़ा करते थे, ये वो झूठ उनका उनसे गुम हो गया, खो गया, ये इफ्क था, ये इनका झूठ था, कोई ऐसी हस्तियां नहीं। वह इस सरफ ना इले का नफरन, अल्लाह ताला ने फिर आप देखें अब शिफ्ट हुई है बात, एक वो लोग कौमे आद और इस तरविश पे चलने वाली दूसरी कौमें जिनको अल्लाह ने हलाक कर दिया, उनको अल्लाह ताला ने बहुत जहन दिया था, बहुत जहन था ही, तो फिर ये सब बड़े कारनामे कर रहे थे ना, तरक्कियां थी, तो बहुत जहन दिया था, बहुत ज्यादा लोगों से बहुत ज्यादा वो समझदार अकलमंद और अपने आप को कहते भी थे, लेकिन उनका हाल देखो, ये एक अल्लाह कोई पहचान ना सके, और उनके मुकाबले में वो जो जिन है, जिन इंसान के बराबर नहीं है अकल में समझ में, लेकिन वो जब अल्लाह की आयात को सुनते हैं, इनका क्या रवैया था? इस कानू या जहादू नबी आयात इल्ला, जब ये कान आंखें दिल होते हुए भी इनकार करते अल्लाह की आयात का, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो जिन थे उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने अल्लाह की आयात को सुना, बावजूद इसके कि उनके पास इतनी समझ नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, वह इस सरफ ना इले का नफर मिनल जिन्नी, जब फेर लाए हम आपकी तरफ एक ग्रोह को जिन्नों में से, यस्तमियूनल कुरआन, उन्होंने गौर से सुना कुरान को। सुभान अल्लाह, हमारे लिए कितना बड़ा ये सबक है, जिन्नों ने भी कुरान को गौर से सुना, हम क्या करते हैं जब कुरान चला देते हैं और उसके बाद अपनी बातें कर रहे हैं, सारा सारा दिन घर में कुरान चल रहा है जी, बरकत के लिए चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बरकत के लिए जरूर सुनाए, लेकिन सुने, लेकिन कभी उसके ऊपर तवज्जो भी कर लेना, कभी गौर भी कर ले। तो उन्होंने कुरआने करीम को सुना। ये कब का वाक्य आता है? ये वाक्य है उस वक्त का जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी होके ताइफ से निकले हैं, जब ताइफ वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और ताइफ वालों ने दावत को रिजेक्ट कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ रहे हैं, और आप कितनी उम्मीद लेकर गए थे उन लोगों के पास कि ये मान जाएंगे, लेकिन जब वो नहीं माने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआए मुस्तदाफीन भी है ना, जब आपको लहू लहान कर दिया, आपका दिल भी टूटा हुआ है और जिस्म भी जख्मी है, अल्लाह ताला ने फिर आपको ये बताया कि आप जब यहाँ पे कुरान पढ़ रहे थे, आप नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ रहे हैं, नखला की वादी में नमाज अदा कर रहे हैं और जिन्नात का एक ग्रोह गुजर रहा है वहां से, उन्होंने जब कुरान को सुना तो वो रुक गए। और देखिए सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला ने फरमाया इस शरफ ना ना हमने भेजा, हम फेर के लाए। ये अल्लाह ही है किसी को फेर के ले आए, कोई किसी तरफ को जा रहा हो और फेर के इधर कुरान की तरफ अल्लाह ले आए। और वाकई हम अब सब देखें, हम में से कोई किसी जगह गया, किसी पार्टी पे गया, अल्लाह हमें वहां ले गया, वहां पे हमने ये बात सुन ली कि भाई इस तरह कुरान का कोर्स है, अल्लाह ताला ने हमें इसके साथ जोड़ दिया। कोई एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, कोई जहाज में जा रहा था, कोई किसी दुकान पे गया, कोई किसी से फोन पे बात कर रहा था, किसी के पास आ, आ, ये सोशल मीडिया पे था, किसी के पास ऐसे ब्राउज करते करते सामने कुरान आ गया और उसकी कोई बात उसके दिल को लग गई, किसी के पास कोई व्हाट्सएप पे क्लिप आ गया और उसने वो सुना, अल्लाह फेर कर लाता है ना। गए किस तरफ वो पता नहीं कि जिन किस काम के लिए जा रहे थे, किधर जा रहे थे, अल्लाह ताला उनको फेर के फरमाया सरफ ना, कुरान का कोई लफ्ज बेकार नहीं है, कोई लफ्ज फालतू नहीं है, ऐसे ही नहीं है, अल्लाह फेर के लाया। तो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत का पैगाम देना, अल्लाह ताला ने जिसको चुन लेता है हिदायत के पैगाम के लिए, देखो कैसे अल्लाह उसकी रहनुमाई कर देता। तो सुना उन्होंने भी था, आद ने भी सुना, इन्होंने भी, जब इन्होंने सुना तो गौर से सुना, ऐसे नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। हमारे पास देखें आप, हर जो हमारा कोई इवेंट होता है उसके ऊपर सबसे पहले एक रसम बना ली हुई है, रसम बना, रसम ही है और क्या, कि आज जी कोई तिलावत करेगा। अब तिलावत क्या हो रही है, मजाल है कि जितने लोग बैठे हैं किसी को समझ भी एक लफ्ज भी आए कि क्या इसने पढ़ा है बंदे ने, या किसी के दिल पे भी कोई असर हो, या कोई गौर से भी सुन रहा हो। गौर से बंदा कब सुनता है, जब वाकई समझना हो। गौर से तब सुनता है जब दिल में लेनी हो बहुत। गौर से सब तब सुनता है जब इंसान अहमियत देता है उस कलाम को, तब गौर से सुनता है। और सुनी अनसुनी किसको करते हैं, जब ना मानना है ना समझना है ना कोई वैल्यू है उस बंदे की जिस जो बात कर रहा है, तब हम इधर उधर देखते रहते हैं, हमें क्या, बस बोलता रहे, बस कब बंद करेगा। यही हाल लोगों का होता है, तो जब कुरान पढ़ा जा रहा होता है इधर उधर देखते हैं कि बस कब खत्म हुआ, ये बड़ी लंबी तिलावत हो गई। अगर नमाज पढ़ने मस्जिद चले जाए वो लंबी तिलावत करें, मजाले कुछ समझ आ रही हो, मजाले गौर हो उसके ऊपर, दिमाग भटक रहा है कहीं और, कहीं और सोचे हैं कब, अब इमाम साहब ने आज तो बहुत ही लंबा कर दिया, कब खत्म करें तो हम रुकू में जाएं, गौर से तब भी नहीं सुनते मस्जिद जाके भी, कहीं पे भी गौर से सुनना हमारे पास नहीं है, घर में लगा लें तब भी नहीं गौर से सुनते। तो वो कहने लगे, वो जिन जो थे वो गौर से सुनने लगे। अब ये जिन आपको पता है, जैसे हमें पता चलता है कि ये जिन्नात जो थे जब इनको आसमानों पे आने से रोक दिया गया था, तो उस वक्त फिर ये तलाश में निकले थे कि कब हमें, क्या ऐसा दुनिया के अंदर हो रहा है, पता नहीं इनके साथ अल्लाह ताला ने कोई शर का इरादा किया या खैर का। सूरह जिन में ये सारी बातें आती हैं कि उन्होंने कुरान को सुना, फिर उन्होंने कहा कि हम तो कभी शिर्क नहीं आप करेंगे, इसका मतलब कोई मुशरिक ही होंगे, हम तो कभी शिर्क नहीं करेंगे अल्लाह ताला के साथ। हमें नहीं पता था कि इंसानों और जिन अल्लाह के ऊपर झूठी बात भी कर सकते हैं कि हमें इस तरह बता दिया हुआ है कि अल्लाह का कोई शरीक है, हमें नहीं पता था कि इस तरह से भी हो सकता है। हम भी हैरान थे कि जब हम ऊपर जाते थे तो हम जाके पहले बातें सुना करते थे, अब कोई बात ही हमें सुनने से रोक दिया गया। तो हम तो जाके वहां पे बैठा करते थे। और हम में से नेक भी हैं, हम में से दूसरे भी हैं, हम में से मुस्लिम भी हैं और हम में दूसरे भी हैं जो हद से भी बड़े में। और हमें तो पता चल गया है कि अब हमने तो जू ही सुना, हम ईमान ले आए अपने रब के ऊपर। तो वो उन्होंने सुना कलाम, फलम्मा हादरू, फिर जब वो हाजिर हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कालू अंसितु, तो वो कहने लगे चुप हो जाओ। उन्होंने एक दूसरे को कहा चुप कर जाओ, खामोश हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ना वो, तो अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि आप रंजीदा थे ना, देखिए पहले मक्का से निकले तो किस वक्त निकले, अबू तालिब और खदीजा रजील तला की जब वफात हो गई है तो उस वक्त निकले, दिल इतना उस वक्त ही गमगीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार्ट ब्रोकन है, जब ताइफ गए तो वहां पे भी आगे से नेगेटिव रिएक्शन, लहू लहान करके उन्होंने भेज दिया। तो अब वादी नखला में पहुंचे, अल्लाह ताला ने जिन्नों को इस तरफ भेज दिया। सुबहान अल्लाह, के ये नहीं मानते तो एक और मखलूक है अल्लाह के पास, कौन सी कमी है, एक और मखलूक है जो आपके ऊपर ईमान ले आती। आप तिलावत कर रहे हैं और वो गुरोहे जिन्नात को अल्लाह ताला ने इस तरफ को फेर दिया, तो वो जाते जाते अल्लाह ताला का ही फेरना था, खुद से नहीं आ गए, जाते जाते अल्लाह ताला ने उनका रुख इधर को कर दिया। और कहा जाता है कि शाम की तरफ के ये जिन थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी और कह रहे हैं खामोश हो जा, हमें तो आज तक अकल नहीं आई कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो चुप करना चाहिए। फैज़ा कुरियल कुरानु फस्तमीउ लहू वअन्सितु, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया सूरह आराफ के एंड में ना, कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो गौर से सुनो और खामोश हो जाओ। उन्होंने तो नहीं पढ़ा था कुरान, वो उस वक्त ही कह रहे हैं, हमें तो हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो गौर से सुना करो और खामोश हो जाया करो। हम फोन उठा लेते हैं, बातें करें, पीछे कुरान चलना। तो देखें नफर को अल्लाह, नफर किसको कहते हैं, नफीर से है, 3 से 10 तक की जमात को, यानी इतने तकरीबन शायद 7 के करीब थे कहा जाता है ये जिन जा रहे हैं। अब इन्होंने कुरान सुना, उन्होंने खामोशी से सुना, फलम्मा कुदिया, जब आपने पढ़ लिया, पढ़ चुके आप, खत्म कर लिया आपने, वल्लो इला कौमी ही मुंतजी, तो वो चल पड़े अपनी कौम की तरफ खबरदार करने वाले बन के। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अच्छा देखिए, हम उन्होंने कुरान सुना तो हम कहते ना सुबहान अल्लाह माशाल्लाह कह देते हैं, चाहे समझ कुछ भी ना आया हो लेकिन बस आवाज खूबसूरत लगी, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, चले ठीक है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, कपड़े झाड़ के उठे चल पड़े, या ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बड़ा खूबसूरत आपने पढ़ा, बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज है, बस इतना। उन्होंने ये नहीं किया हमारी तरह के सुबहान अल्लाह माशाल्लाह 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 बहुत खूबसूरत, चलो जी अब अपने काम पे चलते हैं, हो गया ना अब सुन लिया, नहीं वो क्या हो गए, खुद भी वो ईमान लेकर आए और अपनी कौम के पास वापस मुंजिर बन के गए, मुंजिर बन के, कि अपनी कौम को पैगाम दें। और फिर आगे उनकी कौम को जो उन्होंने कहा है, अल्लाह ताला ने उनकी बात को कुरान की जीनत बना दिया, कयामत तक के लिए लोग पढ़ेंगे उन्होंने कैसे तबलीग की। अल्लाह ताला को कितनी उनकी तबलीग पसंद आई होगी, कितनी उनकी बातें पसंद आई होंगी, जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, अल्लाह ताला ने फरमाया उसकी ज्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती। अगर आप भी अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हो जाए ना, तो अल्लाह ताला को आपकी बातें भी अच्छी लगेंगी, किस तरह आप लोगों को बुला रहे हैं, किस तरह आप लोगों को कह रहे हैं इधर को आओ अल्लाह की तरफ। देखो अल्लाह ताला ने उनकी बातों को यहाँ पे बयान फरमा दी। तो वो अब अपने घर जाके सो नहीं गए, हमारे पास बहुत काम है जी, नहीं, और एक बात सुनी थी, यानी और ये भी नहीं उन्होंने किया, चलो आधी बात सुन के ही एक्साइटमेंट के अंदर भाग पड़ते, तो पूरी बात भी नहीं हमने सुनी होती, जब हमें कोई बात ज्यादा अच्छी लग जाए तो एक्साइटमेंट में ही आगे लेके चल पड़ते, फॉरवर्ड फॉरन करने शुरू होते, अभी पूरा क्लिप सुना खुद भी नहीं है, फॉरवर्ड कर दो ये काम होता, पर पूरा तो सुन लो, बात को पूरी समझ तो लो। उन्होंने बात को गौर से सुना, इसका मतलब समझा है, खामोशी से सुना, क्योंकि जब इंसान खुद बोल रहा होता ना तो समझ नहीं सकता। अब हम, ये कुरान की क्लास है, उसमें आप कितना गौर से बैठते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, मैं तो अपनी स्टोरीज तो नहीं सुना रही ना यहाँ पे, आप कितना गौर से सुनते हैं, खामोश होकर सुनते हैं। ये भी बातें करना है कि जब हम टेक्स्ट कर रहे होते हैं, इसको टेक्स्ट कर दूं, उसको टेक्स्ट कर दूं, अच्छा टेक्स्ट चेक तो कर लूं, आपका ध्यान तो कहीं और है, घर में बातें कर रहे हैं, चलो कहीं मजबूरी होती है, कोई बच्चे हैं जिसके पास या कुछ है उनको को मजबूरी है, लेकिन जिनके पास कोई ऐसे काम नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, क्यों नहीं ऐसी एक जगह तलाश करते जो खामोश, जहां पे खामोशी हो, जहां पे खामोशी से हम काम कर सके पूरे यकसू होके और गौर से सुन सके ताकि बातें दिल में जाएं। यहाँ ऐसे ही सुनते हैं कि भाई एक कान से सुन रहे हैं उनकी तरह, वो जिनको कान है और फिर भी नहीं है, जिनकी आंखें हैं फिर भी नहीं है, जिनके दिल है उनसे भी समझते नहीं, कोई काम नहीं आए, वैसे सुनते हैं या इन जिन्नों की तरह सुनते हैं? सोचे हैं अभी ये मखलूक हमसे नीचे है, हम अशरफ हैं, लेकिन जब इंसान जो है अल्लाह ताला की तरफ नहीं आता ना, अल्लाह को नहीं पहचानता और उसकी आयात को नहीं समझता, तो वो इन इनसे भी नीचे हो जाता है। मैंने आपको बताया चौपायों से भी नीचे अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कान आके नहीं इस्तेमाल करने तो कुछ नहीं हो तुम अल्लाह की नजर में। तो ये लोग पूरी बात इन्होंने सुनी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत भी तो माशाल्लाह कितनी लंबी होती थी, वो लंबी तिलावत फरमाते थे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते थे, तरतील के साथ पढ़ते थे, ठहर ठहर के पढ़ते थे, तो वो पूरी सुनते रहे। और उन्होंने ये नहीं कहा हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तो और भी काम करने, हम जिस तरफ जा रहे थे उधर जाएं, पूरा सुना फिर पलटे हैं और जाके तबलीग कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। और वो कितने मुतासिर हुए होंगे और फिर वो कितना उन्होंने इसको दिल पे लिया होगा। अरे जो बात दिल पे लगती है फिर इंसान उसकी दावत दूसरे को देता है ना, आप में से जो लोग दिल पे लेते हैं फिर वो तो तड़पते हैं, कहते हैं हम आगे जाके किसको बताएं, हमसे ऐसे बैठा नहीं जाता। लोग मुझे कहते हैं हमें इस तरह जब से हम कुरान से जुड़े हैं हमसे हमें चैन नहीं आता, हम पकड़ पकड़ के लोगों को लेकर आते। वाकई इंसान की जब दिल के ऊपर ये लगता है ना, तो फिर वो ये नहीं कहता कि आय हाय मैं ही अब ये काम करती रहूं, मैंने ही कोई जिम्मा लिया हुआ है, कोई ये मेरी जॉब है, फिर ये नहीं कहता वो। तो देखें कि वो लोग फिर गए और आगे जाके खबरदार करने वाले बन गए। अल्लाह अकबर। वो अपनी कौम को जाके कहते हैं या कौम माना ए हमारी कौम। अब देखें वो भी ये नहीं कह रहे तुम लोग कैसे हो और तुम लोग क्यों ऐसे, तुमने कुफर के ऊपर नहीं, तुम फिर भी हमारी कौम ही हो। मैंने आपको क्या बताया, पहले आप उनके साथ खैर ख्वाही से बात करेंगे तो आपकी बात सुनेंगे ना, ओ तुम अल्लाह के दुश्मन हो, ओ तुम फलान हो, ओ तुम ये नालायक हो, ओ बदबख्त हो, इस तरह की बात करेंगे तो फिर कैसे कोई सुनेगा। हम अपने बच्चों को तो ऐसे ही तबलीग करते हैं, क्या ख्याल है, नालायक हो और ऐसे क्या के, तो इस तरह से नहीं होता। या कौम ना है हमारी कौम, आप भी कहें है मेरे बच्चों, है प्यारे बेटे, इन्ना समेना किताबन, बेशक हमने सुना है एक किताब को, उन्जिला मिन बादी मूसा, मूसा अलैहि सलाम के बाद उतरी है, यानी तौरात को भी इसका मतलब वो जानते थे, हो सकता है कि कोई यहूदी जिन्नो, मुसद्दिकन लिमा बैना यदैही, उसकी तस्दीक करती है जो उससे आगे है, यहदी इलल हक, हिदायत देती है हक की तरफ, इला व इला तरीक मुस्तकीम, और सीधे रास्ते की तरफ, सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर। देखो जी एक दफा सुन के ही उनका ये था कि वो जाके कैसे इस कुरान के बारे में बताते हैं कि हमने एक ऐसा कलाम सुना है जो कैसा है। एक तो ये उनको पता है, इसका मतलब अरबी भी समझते थे, समझदार भी जिन थे, उन्होंने सारी बात भी समझी, इसीलिए तो कह रहे हैं ना हमने एक ऐसा कलाम सुना है जो मूसा अलैहि सलाम के बाद आया, इसका मतलब तौरात के बाद नाजिल हुआ, ये उनको पता है तौरात के बाद ये नाजिल हुआ है कुरान, तौरात को की समझ रखते थे, ठीक है। दूसरी बात ये कि ऐसा वो कलाम है जो तस्दीक करता है, पिछले कलाम की तस्दीक करता है, ये भी समझ आ गई, इसका मतलब है कि उनको ये कुरान में से बात समझ आई है कि ये पिछले कलाम को रिजेक्ट नहीं करता, उसको भी मानता है, और यहदी इलल हक, हक की पैर तरफ हिदायत देता है, सच्चाई की तरफ, हक जो रियलिटी है उसकी तरफ हिदायत देने वाला है और सीधे रास्ते की तरफ चलाने वाला है। आयल हुए तो ये कह रहे थे ना, और इनकी तबलीग से और जिन भी मुसलमान हो गए, जी हाँ और जिन भी मुसलमान हो गए, बस जगह पे आता है कि जिन्नात के ग्रोह के 70 जिन ने जिन्होंने कबूल कर लिया इनकी बात को, फिर वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुलाकात करने के लिए आए। तो ये तो पहले बातें अल्लाह ताला ने बता दी, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि मुसलमान हुए ये। फिर जब उन्होंने तबलीग की तो उनसे जो आगे मुसलमान हुए वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे वक्तन फवक्तन आपसे सीखने के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के अलावा जिन्नों के लिए भी ये रसूल बना के भेजे गए थे। जिन्नों में कोई रसूल नहीं आया, ठीक है, लेकिन इंसानों के रसूलों से ही जिन्नों ने सीखा है। इसीलिए वो मूसा अलैहिस्सलाम की भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जिन्नात ईमान लाए होंगे। जिन्नों में यहूदी भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, तो उनको पता चल गया कि ये अब आखिरी रसूल आए हैं और ये उनकी दावत है, ये उनका पैगाम है, वो एक ऐसा कलाम लेकर आए हैं। और ये लोग फिर यानी उसको समझ गए इस बात को, और उन्होंने कहा या कौमना अजीबु दाई अल्लाह, ए हमारी कौम कबूल कर लो अल्लाह के दाई की बात को, यानी कि उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमने बता दिया अब हम ये जाने और इनका काम जाने, हमें क्या आप जो मर्जी करते रहे, नहीं उनको कायल कर रहे हैं, वो कबूल कर लो, वो मान लो, वह आमिनू भी और ईमान लो ले आओ इसके ऊपर, और इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने फायदे को ज्यादा देखता है ना कि इसमें मेरे मुझे क्या मिलेगा, इससे ईमान लाने से मुझे क्या फायदा होगा। तो वो भी उनको इंसेंटिव बता रहे हैं कि जब तुम ईमान ले आओगे तो फिर या फिर लकुम मिन दुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अदाबिल अलीम, जब तुम ईमान ले आओगे तो फिर देखना अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले गुनाहों को भी माफ कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले गुनाहों से भी दरगुजर कर लेगा, बख्श देगा उनको और तुम्हें दर्दनाक अजाब से भी बचा लेगा। अब देख लें क्या चीज थी जिसने इन लोगों को चेंज किया, इन जिन्नों को किस चीज ने चेंज किया। आप सर ने उनसे कोई पर्सनल बातें नहीं की हैं, कोई उनको दर्स नहीं दिया, क्या ख्याल है क्या चीज थी जिसने इनके दिल बदल दिए कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो गए। बाकायदा आके उनको बता रहे हैं कि वो कलाम ऐसा है, और फिर उसकी तबलीग भी करने शुरू हो गए, और उनको ये भी पता चल गया कि अल्लाह ताला बख्श देता है जब कोई ईमान लेकर आता है, अल्लाह ताला उसको अजाब से भी बचा लेगा, वरना क्या है वमन ला युजिब दाई अल्लाह फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्दी। उनको पता है क्या बता रहे हैं कि अगर तुम नहीं कबूल करोगे, जवाब नहीं दोगे अल्लाह के दाई को, तो देखना तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, उसे बच नहीं सकते, वले सलहु मिन दूनी औलिया, और नहीं उसके लिए उसके सिवा कोई हामी और मददगार, जो अल्लाह की बात ना मान, जो दाई अल्लाह की बात नहीं मानेगा फिर उसका कोई मददगार नहीं होगा। हमें तो देखे इतनी बातें समझ ही नहीं आती, कितना कितना कुरान भी पढ़ लेते हैं, हमें ये बात नहीं समझ आती कि अल्लाह अगर अल्लाह के रसूल की बात को नहीं समझा नहीं माना तो देखो फिर कोई हमें बचा नहीं सकेगा। हमने तो फिर भी बीबी पाक दामन का दामन थामा हुआ है, वो फलानी बीबी का दामन, वो फलाने बंदे का दामन, वही हमें बचा लेगा। वो कह रहे हैं एक दफा कुरान सुन के फिर तुम्हारा कोई औलिया नहीं होगा, फिर अल्लाह के पास उसके सिवा फिर कोई मददगार नहीं होगा, यानी तुम बच नहीं सकते फिर। उलाएगा फी दलाले मुबीन, फिर तो खुली गुमराही में है जो नहीं माने, जो ना माने फिर उसका तो बस समझ लो उसकी हलाकत है, फिर वो अल्लाह को हरा नहीं सकेगा कहीं, वो कहीं भाग नहीं सकेगा। आप देख लें कौमे आद के साथ कंपैरिजन करके, वो सोचते थे कि हमें क्या, हमें तो ये बुत बचा लेंगे, हमें तो ये हमारे इलाह हैं जो बचा लेंगे, हम तो इतने ताकतवर हैं, हमें कौन आजिज करने वाला, हमारे जैसा वो को तो कोई सामने है। पर ये क्या कह रहे हैं, जब ईमान आता है ना तो इंसान ऐसे मोम हो जाता है, बिल्कुल नरम हो जाता है, पत्थर भी पिघल जाते हैं, कि वो कहते हैं कि देखो हमें फिर कोई बचाने वाला नहीं, यानी ये नहीं कि हमें बड़े जिन है, जिन्हों में तो ताकत काफी होती है ना, इंसानों से तो ज्यादा होती है, तो आप देखें वो ये नहीं कहते हम इतने ताकतवर हैं हम तो कहीं भाग जाएंगे, हम तो आसमानों पे चले जाते हैं ना, कोई आजिज करने वाला नहीं उसको, कोई यानी उसकी पकड़ से बच नहीं सकता, कोई उसको हरा नहीं सकता, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई पनाह नहीं पा सकता, कोई छुप नहीं सकता, और देखो कोई हामी और मददगार नहीं, फिर क्या करोगे, फिर तो हलाकत है, फिर तो खुली गुमराही में हो। देख लें हम तो पढ़ पढ़ के भी सोचते रहते हैं ना, तबलीग कैसे करनी है, हमें क्या पता कैसे क्या ना, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे दावा का काम करूं, मैं लोगों को कैसे बुलाऊं। कई लोग कहते हैं भाई हम कैसे बूथ पे खड़े हो, हमें तो आता ही नहीं, कुछ नहीं आता क्या इतना पढ़ के भी। उन्होंने एक दफा पढ़ा है, एक दफा सुना है, पढ़ा तो नहीं, सुना है एक दफा। और देखो सुभान अल्लाह क्या सिंपल सिंपल बातें हैं ना, पहुंचा देना हमारा काम होता है, किसी को कन्विंस करके लाना नहीं। कामयाबी हमारी ये नहीं है कि कितने मेरे हाथ में मुसलमान हुए, कामयाबी मेरी ये है कि मैंने कितने अच्छे तरीके से अल्लाह के पैगाम को बस पहुंचा दिया, ये मेरी कामयाबी है, मैंने कितनों तक पहुंचा दी है बस। तो हम इसके ऊपर थे, अब क्या फायदा, वो तो कोई मुसलमान होता ही नहीं, कोई तो सुनता ही नहीं, तो कोई आता ही नहीं इस तरफ, मुझे तो आती ही नहीं बात करनी। आप इसलिए समझते हैं कि आप बात करनी आती का मतलब ये है कि जिस वक्त आप दूसरे को कायल कर लें, कन्विंस कर लें और वो मुसलमान हो जाए या वो कुरान की तरफ आ जाए, तो फिर समझ लें कि आपको बात करनी आती। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको जिस जुबान में भी जिस तरीके से भी आती हो बस उसमें खैर ख्वाही होनी चाहिए, वो दिल से निकलनी चाहिए बात, आप खुद कायल होने चाहिए बस, तो फिर आप जो बात भी करेंगे वो दूसरे के दिल को लगेगी। ऊपर ऊपर की बातें ना किया करें, दिल से बात करेंगे और खैर ख्वाही, ये दो चीजें अगर आपके अंदर होंगी, बात खुद ब खुद मुंह से अदा होगी, बात करनी आ जाएगी। अब इन्होंने कुरान सुना, इनकी जिंदगी बदल गई। मेरा आपसे सवाल है कि फिर और हम क्या चाहते हैं, किस चीज से हम समझते हैं कि जिंदगी बदले, किस चीज से हम समझते हैं कि दिल बदले? कुरान, उनके जिन्नों को ईमान लाने के लिए कौन सी चीज मददगार साबित हुई, किस चीज ने उनको ऐसा बना दिया कि वो मुनजिर बन के उठे? कुरान ने। फिर अगर हम कुरान छोड़ के ही और बातें करते रहे, ये भी सीख लो, वो भी कर लो, ग्रामर भी पढ़ लो और पता नहीं और कौन कौन सी चीजें पढ़ लो, कौन से ये उलूम ले लो, वो उलूम ले लो, लेकिन कुरान की तरफ नहीं आना हमने, फिक भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तरफ तो आओ, कुरान तो पढ़ लो। नहीं, वो तो हमने पढ़ के देखा, ये नहीं होना चाहिए। कुरान ही है जो जिंदगियां बदलता है, दिलों को बदलता है। अगर आपको लग रहा हो कि मेरा दिल सख्त हो रहा है, कुरान की तरफ आए, आप सल्लल्लाहु ने इसका यही इलाज बताया, मौत की याद और कुरान, ये दिलों के जंग को दूर करता है। अगर आपको लगता है मैं अल्लाह से दूर हो रही हूँ, कुरान की तरफ आइए। अगर आपको लगता है कोई और है तो इसकी जिंदगी कैसे बदलेगी, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ना ये कि देखिए हम क्या करें, वो नमाज नहीं पढ़ता, फलाना ये नहीं करता, कुरान की तरफ बुलाएं। मैं तो ये एक ही नुस्खा बताती हूँ, जिस कुरान ने जिन्नों को बदल दिया, हालांकि उनकी अकल हमसे छोटी होती है, उनको बदल दिया, तो हम तो अच्छी भली अकल रखते हैं, क्या कुरान हमें नहीं बदल सकता? यही कुरान का मोजज़ा है, ये दिलों पे असर करता है। तो लेकिन हाँ, उसके लिए इंसान अपना दिल खोले, आंखें खोले, कान खोले, एक कान से डाल के दूसरे से निकाल ना दे, जैसे कौमे आद ने अल्लाह की आयतों के साथ किया, जैसे कुरैश मक्का करते थे, कुरान को सुन रहे थे वो, लेकिन फिर क्या उनका रवैया था? और जिनकी जिंदगियां बदली, उनकी भी जिंदगियां कुरान के जरिए बदली, उन्होंने अपने दिलों को खोल दिया, सब तरह के बायसेस एक तरफ रख के, तासुबात एक तरफ रख के, खुले दिल के साथ इसको सुना तो ये जरूर असर करता है। और आज भी आपने किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना है तो कुरान के जरिए बुलाइए, इसके साथ जोड़ दें, वो अल्लाह से जुड़ जाएगा, इसकी तरफ बुलाएं वो अल्लाह की तरफ आ जाएगा। तो दावत के काम के अंदर भी कुरान को रखें। और फिर देखें, जब इंसान को भी समझ आ जाए और उसके दिल में बात उतर जाए, तो फिर दूसरों को बताना मुश्किल नहीं रहता, जैसे इन जिन्नों के लिए था। इन जिन्नों की किसने ड्यूटी लगाई थी कि आपने इतने आवर्स का दावा करना है, या इन्होंने कितने उलूम हासिल कर लिए थे? इतनी सिंपल सी बात भी आपको समझ आ जाए ना, एज इट इज पहुंचा दे, लेकिन एज इट इज अपनी तरफ से मिला मिला के ना पहुंचाए, जिसको भी बैठे, बच्चों के साथ बैठे, घर में बैठे, एज इट इज बता दे जो आपने बात सुनी, आज तो मैंने कुरान में ये पढ़ा, सिर्फ इसका तर्जुमा ही पढ़ के भी बता देंगे तो कुछ बात तो समझ आ जाती है, बहुत नहीं भी डिटेल आती तो, सिर्फ अगर आप ट्रांसलेशन भी पढ़ लें तो कुरान ऐसा मुश्किल नहीं है कि बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। हाँ, जितनी डेप्थ में जाएंगे लज्जत उतनी ही आएगी, मज़ा उतना ही आएगा, इसकी खूबसूरती का उतना ही ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं करे और सिर्फ तर्जुमा भी पढ़ ले, तब भी ये असर ज़रूर करता है। ये बात समझ ज़रूर आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, क्या चीज़ें उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये आते रहे जिन्नात, आपसे सीखते रहे, हमें अहादीस से पता चलता है कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने, जैसे अलकमा कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछा कि क्या आप में से कोई शख्स उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था जब आपकी जिन्नात से मुलाकात हुई, और बहुत दफा मक्का में ही हुई है, बहुत दफा मक्का में हुई। तो उन्होंने कहा हम में से कोई आपके साथ नहीं था, लेकिन एक रात हमने आपको गुम पाया और हमको यही ख्याल आता था कि किसी दुश्मन ने आपको धोखा दे दिया है या आपके साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ गया है। तो हम इंतहाई परेशानी में हमने वो रात गुजारी, या उन्होंने तलाश की आपसे, सर उनको नहीं मिले तो उनको लगा कि बस अब कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया। तो बहुत वो सारी रात परेशान रहे। कहते हैं जब सुबह हुई तो हमने आपको गारे हिरा की तरफ से आते हुए देखा, हमने कहा या रसूल अल्लाह, और हमने आपसे अपनी परेशानी बयान की कि हम इस तरह सारी रात परेशान हैं। तो आपने फरमाया असल में मेरे पास एक जिन दावत देने आया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट करने के लिए ना, तो मैं उनके साथ गया और मैंने उनके सामने कुरान पढ़ा। वो एक आया जिसने इनवाइट किया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गया और बाकी जिन्हों के सामने आपने कुरान पढ़ा। फिर आप हमको लेकर गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको लेकर गए और आपने हमें वो निशान दिखाए जिन्नों के, और उनकी आग के निशान भी दिखाए जहाँ पर उन्होंने आग जलाई हुई थी, जहाँ पे भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तबलीग की थी। तो एक और रिवायत में आता है कि शाबी ने बयान किया कि उन्होंने आपसे नाश्ता तलब किया, तो आमिर ने कहा ये एक जजीरे के जिन थे। आपने फरमाया हर वो हड्डी जिस पे अल्लाह का नाम पढ़ा गया हो, जब वो तुम्हारे हाथों में आएगी तो गोश्त से भर जाएगी, और इसी तरह गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा बनेगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मना किया कि आप इसके बाद इन दो चीजों से, गोबर और हड्डी के साथ, कभी इस्तंजा ना करना, ये तुम्हारे भाई जिन्नात की खुराक है, यानी और उनके जानवरों की। यानी हमें पता चलता है कि उनके भी जानवर हैं। अब उनके जानवर कैसे हैं, वो उनके जैसे ही होंगे, जैसे जो जैसे वो हैं उसी तरह की उनकी जानवरों की भी कोई और तरह की मखलूक होगी उनकी जानवरों, क्योंकि हमारे जानवर उनके काम नहीं आ सकते। अब देखें कि हमारे जो जानवर हैं इनका गोबर उनके जानवरों का चारा है, और जो हम खा के हड्डी है जिस पे अल्लाह का नाम पढ़ा गया, वो उनके हाथ में जब आती है तो गोश्त से भर जाती है, उनके लिए बहुत ताकत का जरिया बनती है। तो ये मुस्लिम की रिवायत है। तो हमें पता चला कि जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा भी था, और आपने उनके सामने फिर अगेन कुरान पढ़ा। और हमें ये भी पता चलता है कि जिन्नात जो थे तहामा में पहुंचे, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के पास थे। उस वक्त आप उकाज के बाजार का इरादा करने वाले थे और आप अपने सहाबा को सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे। जब जिन्नात ने कुरान मजीद सुना तो उन्होंने कहा कि गौर से सुनो जो ये वाली आयात आई, उन्होंने कहा कि गौर से सुनो वो चीज जो ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है। और सूरह जिन में भी है ना, इन्ना समयना कुरआनन अजबा, उन्होंने कहा कि एक अजीब कलाम हमने सुना है, एक ताज्जुब में डाल देने वाला कुरान। यहदी इला रुश्दी फ आमन्ना भी, वो हिदायत, वो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है, तो हम ईमान ले आए हैं। वलन नुशरी कभी रब्बी ना आहदा, हम अल्लाह के साथ अब किसी को नहीं शरीक करेंगे। सोचे सूरह जिन में ये आता है, एक दफा कुरान सुनने से उन्होंने ये कह दिया। और इंसान है वो शिर्क से बाज ही नहीं आते बार बार कुरान सुन के भी। अल्लाह हु अकबर। तो फिर इसका मतलब आगे उनके अंदर, फिर आगे जिन्नात और इस्लाम लेते आए। और ये भी हमें पता चलता है, उलमा लिखते हैं कि देखें यहाँ पर उन्होंने जो खामोश रहने का कहा, तो इससे पता चलता है कि तालीम जब हो रही हो, इल्म हासिल करते वक्त खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, और उस्ताद की बात को गौर से सुनना चाहिए, एक दूसरे से बातें नहीं करनी चाहिए। और खास उल खास जब कुरान पाक की तालीम हो रही है या कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो, तब तो ज़रूरी होना चाहिए। एक और रिवायत हमें मिलती है जिसमें आता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद से ही है कि मुझे ये बताया गया कि जिन्नात से मुलाकात की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आप किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, ये हो सकता है कोई और इंसिडेंट हो, मल्टीपल टाइम्स जिन आते रहे ना, तो कहते हाँ मैं था। तो जो पूछने वाले ने कहा कि फिर क्या हुआ था, तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत खींचा, एक लाइन खींची और फरमाया इस जगह से ना जाना, यानी इसे आगे ना जाना। और उन्होंने बताया कि ऐसे मैंने चीजें देखी खच्चरों की तरह, जानवरों मतलब जैसे गधे होते हैं, इस तरह से देखी। एक और जगह पे आता है कि ये जिन आपके पास नैनवा बस्ती से आए थे, तो आपने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं जिन्नों को कुरान पढ़कर सुनाऊं, तो तुम में से कौन मेरे पीछे आएगा। तो लोगों ने सर झुका लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि कौन मेरे पीछे आएगा, तो लोगों ने फिर सर झुका लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर कौन मेरे पीछे आएगा, तो फिर लोगों ने सर झुका लिए। फिर एक आदमी ने कहा ए अल्लाह के रसूल, बेशक आप पहल करने वाले, और अब्दुल्ला बिन मसूद उनके पीछे गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी घाटी में दाखिल हुए, जैसे शेबे अलहजून की है घाटी, उस तरह। तो आपने अब्दुल्ला बिन मसूद की गिर्द एक दायरा खींच दिया, यानी एक सर्कल बना दिया जमीन के ऊपर ना, लाइन खींच दी, तो कि आप इसमें ही खड़े रहेंगे। आपने उनको हुक्म दिया आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि वो जिन्नात मेरे ऊपर उतरने लगे और मुझे गधों की तरह लश्कर की सूरत में कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे गधे होते ना इस तरह। तो सहाबा में से कोई भी नहीं आया, सिर्फ अब्दुल्ला बिन मसूद आए थे, उनको भी आपसे सलम ने दूर खड़ा कर दिया और इस तरह दायरा खींच दिया, और वो वहां से ही देख रहे थे। तो मैंने मिली जुली आवाजों का बहुत सारा शोर सुना, तो मुझे अल्लाह के नबी के बारे में खौफ लाहक हुआ कि पता नहीं क्या हो रहा है। अब इंसान परेशान हो जाता है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है, इतना आवाजें आ रही हैं, इतना शोर मचा हुआ है। फिर आपने कुरान की तिलावत की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। तो मैंने कहा अल्लाह के नबी, ये आवाजें, ये शोर किस चीज का था जो मैंने सुना? तो आपने फरमाया वो एक आदमी के सिलसिले में मेरे पास इकट्ठे हुए थे जो इनमें कत्ल हो गया था, और इनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया गया, जो भी फैसला करना था तो आपसे सलम ने किया, वहां पे उसका शायद शोर हुआ होगा। तो फिर जब अब्दुल्ला बिन मसूद बाद में, बाद की बात है ये, आपसे सलम की वफात के बाद के कूफा आए, तो उन्होंने हबशियों के उधेड़ उम्र के कुछ बूढ़ों को देखा, तो जिन जो का उन्होंने ने खौफजदा किया, तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तो लोगों ने कहा ये अजमी लोगों की एक जमात है। तो फरमाया मुझे जिन्नों में वो लोग दिखाए गए थे जिन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की तिलावत की थी, तो शक्लो सूरत और रंग में वो इनके मुशाबे थे, इन हज्जियों जैसे थे, वो कोई एक जमात जिन्नात की थी जो इन्होंने देखी थी, जो इनके जैसी थी। तो आप देखें फिर, यानी एक दाई आया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गया, और जाके आपने उनको कुरान सुनाया, और इस तरह से उनको तबलीग की, और इस तरह उनके दरमियान फैसले भी किए। क्योंकि आप देखें कि पूरी मखलूकात के अंदर से सिर्फ इंसान और जिन दो ऐसी मखलूक हैं जो के कयामत के दिन जिनका हिसाब किताब होगा और जिनके लिए जन्नत और जहन्नम है, ठीक है, बाकी कोई और मखलूक नहीं है जिसके लिए जन्नत और जहन्नम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह एक दफा फरमाया था सहाबा के पास, आपने सूरह रहमान पढ़ी, सारी सूरत की तिलावत कर दी, सहाबा खामोश रहे। तो आपने फरमाया कि मैंने जिन्नों के सामने ये सूरत पढ़ी थी, तो उन्होंने तुमसे बेहतर जवाब दिया, क्या कि फबी अला रबी कुमा तो कदीबान के जवाब में वो कहते ला बिशई मिन निआमे का रब्बना नुकद्दिबु फलक अलहम्द, तो तुमसे बेहतर तो उन्होंने जवाब दिया। तो सहाबा को फिर हुआ, फिर उन्होंने भी इस तरह से जवाब देना शुरू कर दिया, फबी अला रबी कुमा तो कदीबान का। तो मुशरिकी ने मक्का को भी बताया जा रहा है और रहती दुनिया तक लोगों को बताया जा रहा है कि देखो एक ग्रोह जिन्नों का इसी कुरान को सुन के कैसे इसको कबूल कर लेता है और कैसे वो आगे तबलीग करता है। तो तुम भी इससे सीखो, तुम भी इसे समझो कि तुम भी जब कुरान सुनो तो आगे इसको पहुंचाओ और इसको अपने तक ना सिर्फ रखो, और देखो फिर कैसे उन्होंने बेहतरीन तरीके से तबलीग की। तौरात की भी बात की है और फिर इस कुरान की भी सिफात बयान की कि ये सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाता है और हक बात करता है, सच्ची बात करता है, सुभान अल्लाह। और फिर हम देखते हैं कि सारी बात उनको बता दी, अल्लाह ताला फरमाता है अब यहां तक इन जिन्नों की बात खत्म हो गई, अब आखिर की एंडिंग इस सूरा की एंड हो रहा है। अवलम यरो अन अल्लाह लजी खलक समावाती वल अर्द, तुम ये गौर नहीं करते। तारा देखिए, एक नजर होती है आंखों से देखना, एक होता है यरा, जैसे अलम तारा कैफा, तुमने देखा, यरो उन्होंने देखा, प्लूरल की बात है और थर्ड पर्सन, उन्होंने देखा नहीं है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया। वलम या आया भी खल के ना, और उनसे वो थका नहीं। ये क्यों बताया जा रहा है? इसलिए कि तुम सोचते हो अल्लाह ताला कैसे दोबारा पैदा करेगा, जब वो इतने बड़े आसमान और जमीन को पैदा करके थका ही नहीं है, थकावट नहीं हुई। वो कादिर है अला अल मौता, कि वो मुर्दों को दोबारा जिंदा कर दे। देखें, इंसान है या कोई भी मखलूक है, वो थोड़ा काम कर लेना, उसको थकावट लाहक हो जाती है। अल्लाह ताला को थकावट नहीं है कभी, उसने इतनी कायनात पैदा की और रोज पैदा हो रही हैं चीजें। देखें, इस वक्त भी कोई ना कोई दुनिया में आ रहा है, कोई ना कोई चीज बन रही है, कोई ना कोई उसकी मखलूकात में से कोई ना कोई पैदा हो रहा है, लेकिन वो थकता नहीं है, नहीं उसको थकावट नहीं। आसमान इतना बड़ा बना के भी उसको थकावट नहीं। इसमें देखें कितने उसने सितारे सैयारे, वो भी कभी कोई टूट रहा है, कोई दोबारा बन रहा है, कोई नया बन रहा है, उससे भी वो थका नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आया, मैंने आपको क्या बताया कि जब बहुत मेहनत करके कोई थक जाए तो फिर वो क्या दोबारा उठाने पर थक जाएगा? क्या वो दोबारा नहीं उठा सकता? भला इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, क्यों नहीं, बल्कि वो हर चीज पर कादिर है। क्यों नहीं किस बात पे कहा गया? ये कि वो कादिर है कि वो जिंदा करे मुर्दों को, क्यों नहीं कादिर? वो तो हर चीज पे कुदरत रखता है, तो मुर्दों को जिंदा करना कौन सी बड़ी बात। यौमा युअरदुल्लज़ीना कफरू अलन नार, जिस दिन पेश किए जाएंगे काफिर लोग आग पे, अलैसा हादा बिलहक, तो उनसे कहा जाएगा अब बताओ क्या ये सच्चाई नहीं है? तुम तो दुनिया में इसको नहीं मानते थे ना, क्या आग है वो कौन सी आग है? हम तो वहां के फरिश्तों के साथ मुकाबला कर लेंगे। ऐसी कौन सी आग है जिसके अंदर पौधे उग रहे हैं? ऐसे ऐसे मजाक उड़ाते थे और आग के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करते थे और तहकीर करते थे। अब बताओ, आग पे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं आग को, अब बताओ क्या ये हक नहीं है? क्या ये सच नहीं है? तुम तो मानते ही नहीं थे, क्या ये बरहक नहीं है? क्या ये जो तुमसे वादे किए गए थे, तुम्हें बताया गया था कि कुफर और शिर्क के बाद ये सजा है, क्या ये सच नहीं है? कालू बला व रब्बिना, तो वो कहेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल सच है, कसम है हमारे रब की। अब उनको रब भी पता चल गया, अब रब भी याद आ गया, अब उनको सारी बातें भी याद आ गई और बिल्कुल मान भी गए हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, कला फरमाएगा फजूकू आदाब अजूकुल आदाब बीमा कुंतुम तकफुरून, तो फिर चखो इस आजाब को जिसका तुम कुफर करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह, आग जहन्नुम की बहुत खौफनाक चीज है, जो नहीं दुनिया में मानते और जो कुफर करते हैं अल्लाह की आयात का, फिर उनका देखो अंजाम, कि उस दिन तो मान ही जाना है। असल मानना ये कि तुम दुनिया में मानो, उस दिन तो कहेंगे, कसमें खा खा के कहेंगे वाकई ये सच, हम कसम खा के कहते हैं बिल्कुल सच है, सब कुछ सच था, लेकिन दुनिया में अपने ख्यालात के मुताबिक जो दिल करता था वैसे अपना अकीदा बना के रखा। अल्लाह के यहां पहुंचे तो पता चला सब चीज जो सोचते थे वो तो कुछ और था, ये तो कुछ और है, सच्चाई तो कुछ और है। उस दिन कितना बड़ा घाटा होगा। फसबिर ए नबी, आप सबर कीजिए, ए नबी आप इनके साथ सबर करें, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है। ये जो तकलीफें आपको पहुंचा रहे हैं, ये जो इनकार कर रहे हैं, ये जो नई बात सुन रहे हैं, ये जो मुखालफत कर रहे हैं, सबर करें। कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, जैसे कि उलुल अज़्म पैगंबरों ने सबर किया था। मैंने आपको पहले बताया कि उलुल अज़्म कौन कौन से पैगंबर हैं, बाज़ जगह चार का भी जिक्र आता है, बाज़ जगह सात का भी जिक्र आता है, लेकिन ज्यादा राज़ ये है कि पांच ही हैं, नूह अलैहि सलाम, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहि सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यानी उलुल अजम पैगम्बरों का यानी नूह अलैहिस्सलाम को याद करें, वो तो 950 ईयर्स तबलीग करते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करें, उनको तो आग में डाल दिया गया था। मूसा अलैहिस्सलाम को याद करें, उनके साथ फिरौन ने क्या किया था और किस तरह उनकी कौम ने उनको सताया था। और ईसा अलैहिस्सलाम के तो हद ही कर दी कि जब यहूद ने उनको सूली पे लटकाने के लिए प्रोग्राम बना लिया था। तो उनका सबर देखें, उन उलुल अज़्म पैगंबरों का, कि कैसी कौमों के साथ उन्होंने सबर किया। और अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वल जहाँ पे सूरह अनआम में, वलकद कुज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, है नबी आपसे पहले रसूलों को भी जुटलाया गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया फिर, फसबरू अलामा कुज़िबू, उन्होंने सबर किया इसके ऊपर जो उनको जुटलाया गया। वह ऊजू, और वो अजियत दिए गए, हत्ता आता हूँ नसरुना, हत्ता कि हमारी मदद आ गई। और वला मुबद्दिल ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं है, आपके पास भी मदद आएगी ऐ नबी, आप सब्र कीजिए जैसे उन्होंने पिछलों ने सब्र किया। वला तस्ताजिल लहुम, और इनके बारे में जल्दी ना करें। जल्दी ना करें मतलब क्या, अगर अगर हम ये सोचे कि ये सूरत 10 नबवी में नाजिल हुई है, तो इसके बाद ही अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अरसे में हिजरत का हुक्म दे दिया था। और अभी भी यानी 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, आप जल्दी ना करें। हम तो 2 दिन ही तबलीग करके सोचते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता इनका, अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है आप ना जल्दी करें। कअन्नहुम यौमा यरौना मा युआदूना, जिस दिन वो देखेंगे इसको जिसका वादा दिए जाते हैं, लम यलबसू इल्ला सात मिनन नहार, तो नहीं वो ठहरेंगे एक घड़ी दिन में से। यानी फिर उनको ऐसा लगेगा जिंदगी पूरी, कई की 100 साल थी, कि कई की 90 साल थी, कई की चलो इससे कम थी, लेकिन जिसकी 100 साल या 200 साल या 700 साल भी थी, वो भी कहेगा एक घड़ी दिन में से रहा, एक घड़ी दिन में से रहा। यानी दिन भी पूरा नहीं कहेगा कि पूरा मैं एक दिन ही दुनिया में रही हूं, ये पूरी जिंदगी तो मुझे ऐसा लग रहा है एक दिन की थी, नहीं ये भी नहीं कह रहा, कह रहा दिन का एक हिस्सा, अल्लाह अकबर, एक हिस्सा रहे। इतनी थोड़ी लगेगी ये जिंदगी, इतनी सी जिंदगी के लिए इंसान कितना कुछ अल्लाह की नाफरमानी का करता है कि अपने लिए जहन्नुम खरीद लेता है। और इतनी सी जिंदगी में भी क्या इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं कर सकता, जिसको अपने मुंह से कहेगा मैं दिन का कुछ हिस्सा रहा, इतनी थोड़ी देर के लिए भी नहीं तुम अल्लाह की मान के रह सकते थे कि अभी अपने लिए जन्नत का सौदा कर लेते, अपने रब को राजी कर लेते, उसकी रहमतों के साए में आ जाते, इतनी देर के लिए भी नहीं तुम उसको राजी कर सकते थे, इतनी थोड़ी, थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा टाइम को ना। मैं एक जगह पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि वो वाली डाइट ही कामयाब होती है जिसको लोग कहते हैं थोड़े से टाइम के लिए हो बस, यानी 3 दिन की या 5 दिन की, या मैं थोड़े ऐसे नहीं कि जो हमेशा के गए आप ना, कितने महीने आपको करना पड़ेगा, साल करना पड़ेगा, उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इंसान ना इतना इस चीज का हरीस होता है कि बस थोड़े दिन की अगर मुशक्कत उठानी हो ना, तो वो उस पर राजी हो जाता है उसके। ये फैक्ट है, आप इसको देख सकते हैं, ये फैक्ट है जो उन्होंने लिखा हुआ कि इस तरह से लोग इस चीज की तरफ ज्यादा मोटिवेट होते। तो उससे मैं सोच रही थी, देखो सुभान अल्लाह, कि इतनी थोड़ी जिंदगी, इतनी मुख्तसर जिंदगी, जिसको इंसान एडमिट करेगा कि मैं दिन का एक हिस्सा रहा, इसकी मुशक्कत उठाना भी मुश्किल, जबकि हम तो वो चीज जो थोड़ी देर की होती है उसके लिए ज्यादा आमादा हो जाते हैं, उसके जल्दी हम कन्विंस हो जाते हैं कि अच्छा थोड़ी देर के लिए अगर करना है ये काम तो मैं कर लूंगी, मैं ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप कहती हैं 2 घंटे का तो फिर मैं कर लूंगी, अगर आप कहती हैं कि ठीक है 1 दिन का तो मैं कर लूंगी, 4 दिन का वो भी करने को हम तैयार होते हैं, तो 2-3 दिन हमारे लिए इतने लंबे नहीं होते। ये जिंदगी तो दिन का एक हिस्सा, लेकिन आज नहीं ना हम समझते, आज हमें बड़ी लंबी लगती है, ये हम खुद अपने मुंह से कहेंगे कि ये दिन का एक हिस्सा थी, और इतनी थोड़ी देर के लिए भी नहीं अगर हम कर सके कोई ऐसा काम जिससे हम जन्नत में जा सके, तो कितनी हसरत होगी, कितना फिर इंसान उस वक्त रोएगा, कितनी पशेमानी होगी कि हाय इतने थोड़े टाइम में भी मैं अल्लाह को राजी ना कर सके, इतने थोड़े टाइम के लिए ही करना था ना, क्या था मुझे। फिर इसी ने तो अपने हाथों को काटेगा, फिर इसी ने कहेगा ना क्यों नहीं मैंने इनका रसूल का रास्ता इख्तियार किया, क्यों नहीं मैंने बात मान ली, ये इतनी थोड़ी देर के लिए ही तो थी, इतनी शॉर्ट तो थी लाइफ, पलक झपकने में गुजर गई। एक साथ की थी, एक घड़ी थी बस, ये मैंने क्या कर दिया, इस वजह से इतना पछतावा होगा। बला बात ही खत्म कर दी गई, बस पहुंचाना, पैगाम पहुंचाना है, बस ये है। आपको पैगाम पहुंचा दिया गया ना, तो है नबी बस आपका काम यही है, बस पहुंचा दे और कुछ नहीं, पहुंचा दे बस। फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून, तो नहीं हलाक की जाएगी मगर फासिक कौम। पहुंच पैगाम पहुंच भी गया, उसके बाद भी अगर किसी ने नहीं माना तो ऐसे फासिक ही होंगे जो फिर हलाक होंगे। जो जरा भी अकल रखता हो, समझ रखता हो, वो तो फिर कभी भी आग का सौदा नहीं करेगा। इतात गुजार तो हलाक नहीं होंगे, फासिक ही हलाक होंगे। और फासिक वो ही है, फासिक वो होता है जो अल्लाह की जो हदें हैं कायम की भी उनसे निकल जाए, जो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ दे, जो इताअत से बाहर निकल जाए, वो फासिक होता है। अब जब बलाग हो गया तो किसी को फासिक नहीं रहना चाहिए, फिर भी कोई फासिक रहा तो फिर वो हलाकत ही है उसके लिए, और क्या। तो हम देखते हैं कि देखिए सुभान अल्लाह, सूरत का शुरू भी कुरान के जिक्र से है कि ये कुरान नाजिल हुआ उस अजीज और हकीम की तरफ से, एंड भी है बलाग पहुंचा देना। हमारा काम भी क्या है, बलाग पहुंचा दें बस, यही हमारा काम है और यही कुरान का पैगाम है, आगे तक पहुंचा दें। और इसी कुरान के जरिए ही इंसान को हिदायत हासिल होती है, इसी कुरान के जरिए इंसान राह पाता है। और जो दाई है उसको सब्र से काम लेना होगा। पैगंबरों तक को यही मैसेज दिया गया, ये कोई फूलों की सेज नहीं है कि लोग हार पहनाएंगे, लोग अनॉयड भी होंगे, कभी कोई बात भी सुनाएगा, कभी कोई तेवरी भी चढ़ाएगा, कभी कोई बुरी बात भी कह देगा, कभी कोई देख के आपको भाग भी जाएगा, लेकिन सब्र। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये तसल्लियां दे रहा है, जब आप ताइफ से वापस आ रहे, जब आपका दिल मजरूह है, जब मक्के वाले भी आगे खून के प्यासे हैं, और वहां पे भी अब दाखिल होने की समझ नहीं आ रही कि कैसे दाखिल हुआ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पनाह लेके गए थे फिर। तो फिर ऐसे वक्त में जो बहुत डेस्परेशन का वक्त है, उस वक्त भी कहा जा रहा है सब्र कीजिए, उस वक्त भी कहा जा रहा है जल्दी ना कीजिए, उस वक्त भी कहा जा रहा है चलते रहें इसी रास्ते पे। सब्र यही होता है कि इंसान अपना रास्ता ना छोड़ दे, छोटी छोटी बातों पर डिसहार्ट होके, हिम्मत हार के ना बैठ जाए, किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने कुछ ताना दे दिया, उसके ऊपर फौरन सारा काम छोड़ छाड़ के, अब हमसे नहीं होता, हमें तो फलाने ये कह दिया, ये बेसब्री है। तो सब्र से काम लिया जाए, और जिन्नों से ही हम कोई सीख लें बात, अगर हमें खुद नहीं समझ आती, जिन्नों से ही सीख लें, वो कैसे अल्लाह का पैगाम लेकर आगे गए, उन्होंने कौन सी बातें सुन के और फिर उनके दिल में उतर गई। एक दफा का कुरान सुना हुआ दिल में उतर गया, हम तो आप 26वें पारे पे पहुंच गए, अभी भी हम पूछते हैं कि हमें बलाग करना है, पहुंचाना है कि नहीं। और ये ना समझे कि हमेशा की ये जिंदगी है, आज तो ऐसे ही लगता है ना, पता नहीं यहीं पे हैं और यहीं रहेंगे, नहीं जल्दी ये खत्म हो जानी है, ये तो एक घड़ी की है। और आज की जिंदगी के मुकाबले में जब वो लाखों करोड़ों साल की जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी आएगी, तो उसका सामना कैसे करना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, उसके लिए सोचें, शऊर की जिंदगी गुजारे, बेशऊरी की नहीं, कि बस जिंदगी गुजरती जा रही, टाइम पास होता जा रहा, पता ही नहीं किधर जा रहे हैं और किधर को एंड अप होना है, शऊर की जिंदगी गुजारे। और ये हकीकतें अल्लाह ताला ने बयान कर दी हैं, और ये हक है, ये सब हक है। अल्लाह ताला हमें इससे सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فاسقون.